السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. آمين. अल्हम्दुलिल्लाह, रमज़ान मुबारक के प्यारे प्यारे दिन चल रहे हैं और हमारी कितनी बड़ी खुशकिस्मती है कि अल्लाह ताला ने हमें ईमान की हालत में ये दिन देखने नसीब किए। बहुत से लोग ऐसे हैं जो पिछले साल के रमज़ान को देख पाए थे, लेकिन इस साल हमारे साथ नहीं है। और बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो ये रमज़ान देख पा रहे हैं मगर उनके पास ईमान की दौलत नहीं है। तो किस कदर खुश नसीब हैं जिनके पास रमज़ान भी है और ईमान भी है। क्योंकि अगर ईमान ना हो तो चाहे कितना ही कीमती महीना और कितना ही खूबसूरत वक्त क्यों ना हो, लेकिन ईमान के बगैर इंसान इस महीने की रहमतों और बरकतों से अपना दामन भर नहीं सकता। तो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला ने हमें ये दोनों नेमतें अता फरमाई। और अगर आप रोज़ा रख पा रहे हैं या किसी मजबूरी की वजह से, शरई उजर की वजह से नहीं रख पा रहे, मगर इस महीने की और बहुत सारी खैर है जो आप अपने दामन में समेट सकते हैं। तो ये रोजेदारों के लिए भी और गैर रोजेदारों के लिए भी, सबके लिए बराबर मुबारक है। रहमत की बारिश बरस रही है और हर तरफ दीवाना वार लोग इसकी रहमतें लूट रहे हैं। और ऐसा ना हो कि कहीं मैं और आप पीछे रह जाएं, तो हमने भी इस महीने में मेहनत करनी है, तेज दौड़ना है। सोचें, कयामत के दिन जब आप अपना अमालनामा खोलेंगे और कुछ नमाजें मल्टीप्लाई विद 70 होंगी, ज़कात मल्टीप्लाई विद 70 होगी, फ़र्ज़ रोज़ा मल्टीप्लाई विद 70 होगा। तो ये वो फ़राइज़ हैं जो रमज़ान में आपने अदा किए थे, और नफली तो जितनी इबादत है वो फर्ज के बराबर अजर में होगी जो इस महीने में की गई, यानी वो भी अपग्रेड हो जाएगी, उसका सवाब भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो कितना अच्छा लगेगा। और ये सिर्फ रमज़ान में ही हो सकता है। लिहाजा हमने बातें कम, सोना कम, कुकिंग कम, सैरो तफरी तो बहुत ही कम, फ़ोन कम, टेक्स्ट कम, और इबादत ज़्यादा करनी है। अब्दुल्ला बिन उमर फरमाते हैं, जब शाम हो तो सुबह का इंतज़ार ना करो, यानी नेक काम करने के लिए, और सुबह हो तो शाम का इंतज़ार ना करो। और तंदरुस्ती में बीमारी के लिए तोशा तैयार कर लो, और ज़िंदगी में मौत के लिए सामान कर लो। यानी ये ज़िंदगी की मोहलत बड़ी कीमती है और ये सेहत के दिन बड़ी कीमती हैं। बीमारी से पहले पहले इतना इकट्ठा कर लो कि अगर बीमारी आ जाए तो वो जो काम ना कर सके उस वक्त, वो पहले से जमा करके रखे में हो, और फिर उनका भी अजर इंसान को मिलता रहता है। क्योंकि जो काम वो तंदुरुस्ती में करता है, अचानक से बीमारी आ गई तो अल्लाह ताला फरिश्तों से फरमाता है कि मेरे बंदे के लिए वो ही कुछ लिखते रहो जो वो तंदुरुस्ती के वक्त में किया करता था। इसी तरह जिंदगी चल रही है, अभी तो सांस चल रही है, लेकिन मौत आ गई तो इससे पहले सामान करना है, क्योंकि मौत आ गई तो फिर सामान करने का वक्त नहीं होगा। तो लिहाजा अपनी कोशिशों को तेज करना है, सुस्ती इख्तियार नहीं करनी। हम अपनी इस नशिस्त में इंशाअल्लाह ताला आज नमाज में जो हमने सीखा था, पहले सना सीखी थी, अब हम एक और सना सीखते हैं जो भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज में पढ़ा करते थे, और ये सूरह फातिहा से पहले पढ़नी है। इनमें से कोई एक भी पढ़ सकते हैं। हमने लास्ट टाइम सुभानकल्लाहुम्मा व बिहम्दी का इस पे बात की थी, और उम्मीद है कि आप लोगों ने उसको इंजॉय करके पढ़ा होगा। अब तो आज एक और सना मैं आपको बताती हूँ। तीन मिलती हैं हमें हदीस में, एक जो आपके साथ पहले डिस्कस की थी, एक और भी है जो बहुत आसान है, और ये नहीं कि आपने तीनों पढ़ लेनी है, इनमें से एक पढ़ें और चूज कर लें कौन सी आपने पढ़नी है। तो बदल बदल के पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह आपका ध्यान भी रहेगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे एक शख्स ने कहा, अल्लाहु अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाहि कथीरा व सुबहानल्लाहि बुकरतन व असीला, कि अल्लाह सबसे बड़ा है। जब आप अल्लाहु अकबर कहते हैं ना, तो एक्चुअली आपने जब नमाज स्टार्ट की थी तब भी अल्लाहु अकबर कहा था। तो अल्लाह ताला हर चीज़ से बड़ा है, मतलब है कि हर चीज़ उससे कमतर है, छोटी है। तो जब इंसान ये बात कहता है और बार बार नमाज में तो कहता है, कितनी दफ़ा रिपीटिशन होती है ना अल्लाहु अकबर की, तो इंसान खुद को नीचा कर रहा होता है और अल्लाह ताला को सबसे बड़ा करता है। देखिए, तो तुझसे बड़ी कोई ज़ात नहीं, तुझसे बड़ा देखने वाला नहीं कोई, तुझसे बड़ा सुनने वाला कोई नहीं, तुझसे बड़ी शान किसी की नहीं, तुझसे बड़ी बुजुर्गी किसी की नहीं, तू सबसे बड़ा है। तो इतना बड़ा है कि तेरी बड़ाई की हकीकत मैं जान ही नहीं सकता। और इसका असर भी होना चाहिए इंसान की जिंदगी पे। जैसे कि आप किसी चीज से अगर दुनिया में डरते हैं, मिसाल के तौर पे किसी हुकूमत से, किसी लोगों से, तो वो खौफ इतना नहीं होना चाहिए कि अल्लाह ताला के खौफ से भी आगे बढ़ जाए, क्योंकि अकबर तो अल्लाह है। इसी तरह मोहब्बत भी किसी और से उतनी नहीं होनी चाहिए जितनी अल्लाह ताला से है, क्योंकि अल्लाह अकबर है। तो अल्लाह ताला को अकबर जाने, इसी तरह किसी का हुक्म भी अल्लाह ताला के हुक्म के बराबर नहीं हो सकता, क्योंकि अल्लाह ताला अकबर है मेरी जिंदगी में, सबसे बड़ा अल्लाह है, सब नीचे हैं, चाहे वो कोई कानून हो, चाहे वो कोई हुकूमत हो, चाहे मेरी औलाद हो, चाहे मेरे खानदान वाले हों, दोस्त अहबाब हों, लोग हों, कोई भी, अल्लाह ताला से बढ़ के नहीं है वो, अकबर सिर्फ अल्लाह है। तो अल्लाह ताला, तू अकबर है, कबीरा बहुत बड़ा, अल्हम्दुलिल्लाह कथीरा। अभी आज हम बात करेंगे अल्हम्दुलिल्लाह की, तो अल्हम्दुलिल्लाह में तमाम तारीफ भी और तमाम शुक्र भी तेरा बहुत ज्यादा, और सुबहान अल्लाह, और तेरी पाकी हम बयान करते हैं बुकरतन व असीला, कि सुबह भी और शाम भी। तो ये जब उस शख्स ने कलिमात कहे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस शख्स के लिए आसमान के दरवाजे खोल दिए गए हैं। तो इब्ने उमर फरमाते हैं कि जब से मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये बात सुनी, मैंने इन कलिमात को कभी नहीं छोड़ा। तो ये आप तस्बीह के तौर पे भी कर सकते हैं। इसी तरह एक और दुआ या सना जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज में पढ़ा करते थे, तो वो क्या है, अल्लाहुम्मा बाइद बैनी व बैन खताया, ए अल्लाह मेरे और मेरे गुनाहों के दरमियान दूरी डाल दे, बाईद इतने दूर कर दे, कमा बात तबीन अल मशरिक वल मगरिब, जैसे मशरिक और मगरिब के दरमियान दूरी है, अल्लाह मेरे गुनाह इतने मुझसे दूर कर दे, ये अपने गुनाहों को देखना भी नहीं चाहता, इतने दूर हो जाए, इतना फासला हो जाए। अल्लाहुम्मा नक्कीनी मिन अल खताया, अल्लाह मुझे पाक कर दे गुनाहों से, कैसे, कमा युनक्का सौबुल अबयद मीन दनस, जैसे सफेद कपड़ा मैल कुचैल से पाक किया जाता है। आपको पता है सफेद कपड़े के ऊपर अगर जरा सा भी धब्बा पड़ जाए तो वो बहुत प्रोमिनेंट होता है, बहुत ज्यादा नजर आता है। मोमिन के लिए भी उसकी जिंदगी सफेद कपड़े की तरह होती है, कि एक गुनाह का भी छींटा उसके ऊपर पड़ जाए, उससे कोई गुनाह सरजद हो जाए, तो वो उसको इस कदर इरिटेट करता है, वो उसको इतना उसके लिए नाकाबिले बर्दाश्त होता है कि वो एक धब्बा भी बर्दाश्त नहीं करता। तो वो कहता है, अल्लाह मुझे इस तरह पाक साफ कर दे। और आप देखें, जब आप सफेद कपड़े को ब्लीच करते हैं तो वो कितना उजला, कितना साफ नजर आता है, उसमें कोई धब्बा वगैरह नहीं होता। तो ऐसे मुझे कर दे, और अल्लाह मगसिल गुसल से जैसे होता है ना, धो दे खताया या मेरी खताओं को, बिल माई पानी से, वह थलजी और बर्फ से, वल बरद और ओलों से, यानी पानी से सफाई कर दे और बर्फ और ओलों से जैसे सफाई होती है अल्लाह ताला वैसे कर दे। इंतहा दर्जे की पाकी है कि जब ओलों से भी और बर्फ से भी सफाई होती है, सिर्फ पानी से उस तरह से नहीं हो सकती। तो ये भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ मांगा करते थे या सना किया करते थे, और इसके अंदर अपने लिए दुआ भी है और अल्लाह ताला की तारीफ भी है। तो आप भी अपनी नमाज में इस तरह सोच समझ के सना के अल्फाज कहा करें, तो आप देखेंगे कि उसी से आप अगर हाजिर दिमागी से कह रहे हैं तो उसी में आपने अपने लिए दुआ भी कर ली, और यही नमाज होती है जो कामयाबी तक पहुंचा देती है, जिसमें इंसान सोच समझ के बात करे। नमाज को तेजी से अदा ना कीजिए, क्योंकि जब आप रश करते हैं ना नमाज में, तो आप खुद सोचें, जब मैंने आपको बताया था कि नमाज हम कलाम ही है, अल्लाह ताला के साथ कलाम करना है, आप जब आपस में बात करते हैं तो किसी के साथ आप बात करते हुए एक मशीन से चला दे ऐसे के मंबल कर रहे हो आप, एक लफ्ज दूसरे पे चढ़ाओ, क्या अच्छा लगता है? और नमाज आप अल्लाह ताला से कलाम कर रहे हैं, तो क्या वो ऐसी होनी चाहिए? नमाज का हर हर लफ्ज अलग अलग पढ़े। जब हम अक्सर जमात से पढ़ते हैं तो आप देखते हैं कि कितनी खूबसूरती से पढ़ा जाता है। आपको कोई खड़ा करा दे कि आप इमामत कीजिए आज, तो आप इमामत करने के लिए जब खड़ी हुई हैं तो ऐसे ही पढ़ेंगी जैसे आप अपनी सिरी नमाज में पढ़ती हैं अकेले में, नहीं ना? आप बड़े आराम आराम से बड़े खूबसूरत बना बना के पढ़ते हैं, हालांकि कौन सुन रहा है? लोग। और जिस वक्त सिर्फ अल्लाह ताला सुन रहा है, उस वक्त हम कैसी पढ़ते हैं, खुद सोचिए। अल्लाह अकबर। तो जब हम दुआए इस्तफ्ताह, जिससे ओपनिंग होती है नमाज की, जो सना है, जब वो पढ़ लेते हैं तो उसके बाद हम क्या करते हैं, सूरह फातिहा पढ़ते हैं। मगर सूरह फातिहा पढ़ने के लिए हम पहले तावुज़, यानी अल्लाह ताला से इस्तेआज़ा, अल्लाह ताला से उसकी पनाह मांगते हैं कि औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, ये भी पढ़ सकते हैं। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू दाऊद की जो रिवायत है, औज़ु बिल्लाहि समील अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़ी व नफ़खी व नफ्ती, ये पढ़ा था आपने। तो औज़ु बिल्ला, मैं पनाह मांगता हूँ अल्लाह की। इब्ने कय्यिम ने इसको बड़ी खूबसूरती से बताया, उन्होंने कहा कि जैसे एक बच्चे की मिसाल होती है ना, अब उसके पीछे कोई लग गया और बच्चा बेकरार है, जो पीछे लगा है वो उसको कत्ल करना चाहता है, और बच्चा दौड़ रहा है, बच्चा बेबस है ना, वो दौड़ रहा है, वो भाग रहा है, उसको कोई जगह चाहिए, कहीं छुप जाए जाके, एकदम वो अपने सामने अपने बाप को खड़ा देखता है जो बाहें फैलाए हुए है। वह बच्चा जल्दी से जाके अपने बाप की बाहों में पनाह ले लेता है। तो ये तो इंसान की मिसाल है, उस बच्चे को चैन आ जाता है, उसको पता चल जाता है कि कोई है जिसने मुझे थाम लिया। तो इमाम इब्ने कय्यिम फरमाते हैं कि देखो, जब अल्लाह ताला के लिए आप ये कहो, आऊदु बिल्ला, मैं पनाह मांगता हूं अल्लाह की, कि अल्लाह मुझे पनाह दे दे, मुझे अपनी पनाह में ले ले, किससे? अल्लाह वो जो समी है और अलीम है, सुनने वाला और जानने वाला है, किससे पनाह में ले ले? कौन है जो मेरा दुश्मन मेरे पीछे दौड़ा आ रहा है? शैतान जो मरदूत है, रजम से, रजम किया हुआ मरदूत है, धुतकारा हुआ है, कर्स्ड है। क्यों ये हमने पढ़ना है? इसलिए कि जब आप कुरान करीम की तिलावत करने लगे, उससे पहले तो पढ़नी ही चाहिए, क्योंकि आगे आप सूरह फातिहा पढ़ रहे हैं, तो अल्लाह ताला ने खुद हुक्म दिया है कि आप ये तावुज़ पढ़ा करें, अल्लाह ताला की पनाह ले लिया करें। दूसरे ये कि हर नेकी के काम में शैतान ने तो ज़रूर आके खड़े होना होता है, और ख़ास तौर पर नमाज में बहकाने के लिए तो एक शैतान इसी ड्यूटी पर मुकर्रर होता है कि वह लोगों को नमाज में बहकाए। तो इसलिए ज़रूरी है कि आप सोच समझ के तावुज़ पढ़ें, और ये समझें कि मैंने अल्लाह ताला की पनाह ले लिया, उसके बावजूद भी नमाज के अंदर आपको वसवास जब आते हैं तो आप लेफ्ट साइड पे थोड़ा सा अपने चेहरे को घुमा के और 3 दफ़ा थुतकार दें, ऐसे कि जिसमें थोड़ा सा थूक भी होता है, ऐसे थ और औज़ु बिल्ला फिर से पढ़ें। इंशाल्लाह ये करते रहेंगे तो आपको शैतान वसवसे नहीं डालेगा। तो आप पढ़ें औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, या औज़ु बिल्लाहि समील अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़ी ही, हमज़ से, उसकी हमज़ क्या होते हैं? अब हमज़ उसकी फूंके, उसकी फूंक, उसको हम कहते हैं कि इंसान के ऊपर ये जो शैतान है ना, जो वसवसे डालता है, पोक करता है उसको, कचोके लगाता है, अंदर कुछ डालता है, फूंक मारता है, उससे में अल्लाह ताला की पनाह में आते हैं। और वह नफखी, और नफ का भी मतलब फूंक मारना, हम्स का मतलब वसवसे डालना, आप ये समझ लें, पोकिंग, और नफ का मतलब फूंक मारना। वह नफ ही, और नफसी, नफसी वो है जो जैसे मैंने आपको बताया थूक, जिससे थोड़ा सा थूक भी होता है, ऐसी ऐसी फूंक। तो आपको पता है मिन शर्र नफ्फाथाति फिल उकद, वो उनसे भी अल्लाह ताला की पनाह हम लेते हैं कि सूरह फलक में, कि जो गिरोह में फूंके मारती हैं, तो जिसमें थोड़ी सी थूक भी होती है, और उससे क्या होता है, जादूगर करने वाले ना इसी तरह से फूंके मारते हैं। तो उसके नफ से भी, नफ से भी फूंकों के मारने से, और हम से भी, उसके वसवास से भी, उसकी पोकिंग से भी, ए अल्लाह मैं तेरी पनाह ले रही हूँ ताकि शैतान मुझे बहकाए नहीं नमाज में। और देखें आप, जब इतने बड़े रब की पनाह आपने ले ली, तो शैतान की फिर मिजाल नहीं हो सकती कि वो कोई वसवास डाले। ये वसवसे डालना शैतान का काम होता है, लेकिन हमारा काम ये है कि जब भी ऐसे ख्यालात आए तो हम तावुज़ पढ़ के और अल्लाह ताला की पनाह ले लें। ये नहीं कि हम भी ड्रैग हो जाएं, जिस तरफ को हमें लेकर जा रहा है हम भी उस तरफ को चल पड़े, और एक ख्याल उसने डाला, बाकी हमने स्टोरी आगे खुद ही बनाना शुरू कर दी, वो नहीं होना चाहिए। फिर आप पढ़ते हैं बिस्मिल्ला बी, आप देखें इतना ही प्यारी बात है कि आप शुरू कर रहे हैं तो बिस्मिल्ला बी साथ, साथ का मतलब क्या, कि साथ मुसाबहत के लिए भी है, कि साथ मांगा मुसाहिबत, कि साथ मांगा कि अल्लाह ताला के नाम के साथ, और मदद के लिए भी कि अल्लाह ताला के नाम की मदद के साथ, और बरकत के लिए भी अल्लाह ताला के नाम की बरकत के साथ मैं शुरू करती हूँ। बिस्मिल्ला, इस्म से है ना, बिस्मिल्ला बी और इस्म मिल गया, बिस्मिल्ला अल्लाह ताला के नाम की। अल्लाह ताला का नाम बड़ा ही बाबरकत है, उसके नाम से जो चीज़ शुरू की जाए उसमें बरकत होती है, इसलिए मोमिन जो है वो अपना हर काम अल्लाह के नाम से करता है। इसीलिए हमें हर काम के शुरू करने में क्या सिखाया गया कि बिस्मिल्ला पढ़ो। तो पहली वही भी तो उतरी थी, तो यही कहा गया ना, इकरा बिस्मी रब्बिकल्लज़ी खलक। और जो काम अल्लाह के नाम से नहीं शुरू किया जाता वो जड़ कटा होता, उसमें बरकत नहीं रहती, उसमें कोई खैर नहीं रहती। तो अल्लाह के नाम की बरकत से ही आप नमाज भी शुरू कर रहे हैं, और जब आपने मदद भी मांग ली अल्लाह के नाम की और आपने ये कह दिया, तो अब ये नमाज बरकत हो गई। और जब आप कुरान पढ़ने लगते हैं तब भी आप ये कहते हैं। और कौन अल्लाह, जो अर-रहमान भी और रहीम भी। अब अल्लाह ताला का नाम को पहले देख लेते हैं। अल्लाह ताला का नाम जो है, इतना खूबसूरत ये नाम है ना, अल्लाह लफ्ज़े जलाला जो है, अल्लाह ताला का इसमें आलम है। और इसके माने क्या हैं, अल इलाह से भी बास कहते हैं कि अल इलाह, कि वो जिसके सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, वो इलाह है, इबादत के लायक। अल और इलाह को मिला दिया गया तो अल्लाह बना। और बास कहते हैं वलीहा से ये अल्लाह का लफ्ज़ आया है, तो यानी मतलब क्या, वलीहा का मतलब हैरान रह जाना, यानी जिसकी ज़ात ऐसी है कि इंसान उसके बारे में सोचता है तो हैरान और शशदर रह जाता है, ये अल्लाह तो कैसा है। और फिर इतना खूबसूरत एक और भी इसका माना है कि वो जिसके पास हो के ना इंसान को सुकून आ जाए और सिक्योरिटी हासिल हो उसको, और हिफाजत और पनाह मिल जाए, वो जात अल्लाह से, वो जात इस हिफाजत के लिए और पनाह के लिए और ज़रूरियात के लिए जिसकी तरफ रुजू किया जाए। और एक और माना इसका जो सबसे मुझे प्यारा लगता है, वो ये है कि वो जात जो अगर दूर हो ना, तो उसकी जुदाई के सदमे में इंसान पागल हो जाए, ऐसी जात, यानी उससे दूरी, उससे बिछड़ना, उससे जुदाई, इतनी ज्यादा उससे मोहब्बत हो कि वो बर्दाश्त ना हो दूरी, वो ऐसी जात है कि इंसान क्रेजी हो जाए, जुनून हो जाए उसको। और वाकई जिसकी जिंदगी में अल्लाह ताला नहीं है वो क्रेजी ही है, वो जुनूनी है बस। अल्लाह अकबर, बिस्मिल्लाह और अर्रहमान अर्रहीम। तो रहमान और रहीम अल्लाह ताला के वो नाम है जिनके अंदर रहम की सिफत है। रहम की सिफत हमें पता चलती है, और ये सिफत भी ऐसी सिफत है कि रहमान में बहुत ज्यादा रहम करने वाला, कि अल्लाह ताला ने सुबहान अल्लाह उसकी रहमत के 100 हिस्से उसने किए और 99 हिस्से अपने पास रखे, सिर्फ एक हिस्सा जमीन पे उतारा, जिसकी वजह से माँ बाप बच्चे से प्यार करते हैं, बहन भाइयों के दरमियान जो मोहब्बतें हैं, खाला बुप्पी नानी दादी मामू चचा इनके जो रिश्ते हैं, दोस्तों के साथ जो आपकी मोहब्बतें हैं, आपकी अपनी मट्टी के साथ मोहब्बत है, आपकी किसी चीज के साथ मोहब्बत है, आपकी उसके साथ रहमत और शफकत का मामला है, जो भी ये सारे हैं ना, ये सिर्फ इस वजह से कि वो जो एक रहमत उस रब ने इस दुनिया पे उतारी, सुबहान अल्लाह अल्लाह अकबर, कि उसका एक जर्रा किसी को मिला, और वो रहमत उसकी वजह से सिर्फ मैं और आप नहीं, पूरे जितने जिन्नात इंसान जानवर चरिंद परिंद हर कोई जो दूसरे के साथ शफकत रहमत मोहब्बत का मामला कर रहा है, वो उसको एक बिट मिला है उस एक रहमत में से। और सोचे जिसके पास 99 रहमतें होंगी वो कैसा होगा। रहमती वसे आप कुल्ला शाही, मेरी रहमत हर चीज पे छाई हुई है। अल्लाह ताला की रहमत ही है कि इंसान इस दुनिया में चल फिर सकता है अपने गुनाहों के बावजूद, उसकी रहमत का अंदाजा हम नहीं कर सकते। इसीलिए कभी भी ये ना सोचे कि मेरे गुनाह इतने ज्यादा हो गए अब तो मेरी बख्शिश ही नहीं होती। भाई तुमने क्या अल्लाह की रहमत को इतना छोटा समझ लिया कि तुम उसकी रहमत से ही मायूस हो गए? तो अल्लाह ताला की रहमत को कभी छोटा ना समझे, कभी अंडर एस्टिमेट ना करें, उसकी रहमत बहुत वसी है। आपका क्या ख्याल है, अगर इंसान इतनी गुनाहों को करने के बावजूद दुनिया में चलता फिरता खाता पीता है सोता जागता है, बावजूद इसके कि वो नाफरमान है, या बावजूद इसके कि एक इंसान अल्लाह ताला को मानता ही नहीं है, तो वो कोई अल्लाह की रहमत ही है कि जिसकी वजह से वो सरवाइव कर रहा है। वरना उसकी रहमत ना हो तो कोई इंसान भी इस जमीन के ऊपर चलता फिरता नजर ना आए आप। तो ये जो हम खा पी रहे हैं मजे कर रहे हैं, और मुशरिकीन भी शिर्क करके भी अल्लाह ताला को गाली देने के बावजूद पनप रहे हैं, तरक्कियां कर रहे हैं, ऐशो आराम कर रहे हैं, इसकी उसकी रहमत है। तो उसकी रहमत हर चीज पे छाई हुई, हर चीज पे, और उसकी रहमत उसके गजब से भी ज्यादा है, उसके गजब के ऊपर भी गालिब है उसकी रहमत, यानी वो अपना गुस्सा उसका पीछे, उसकी रहमत आगे। और रहीम कौन है? जो मुकम्मल तौर पर पूरा पूरा रहमत देने वाला हो। और उसकी ये सिफात ऐसा नहीं है कि इनमें कहीं कोई कमी हो, पूरी हैं, पूरी परफेक्शन के साथ हैं, सुभान अल्लाह। तो अल्लाह ताला की रहमत बहुत ही वसी है। और देखें कुरान स्टार्ट होता है और हम अपनी नमाज भी स्टार्ट करते हैं, और हम हर काम को स्टार्ट करते हैं, तो हम ये कहते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह वो जो रहमान और रहीम है। ये अल्लाह ताला ने खुद सिखाया है हमें। आप देखें ये नहीं फरमाया कि ये कहो कि उस अल्लाह के नाम से जो कहार है और जब्बार है और तुम्हें अजाब देने वाला है और तुम्हारे पर सख्त है और जो तुमसे इंतकाम लेने वाला है और जो सबको पे कुदरत रख के उसको सही सीधा कर देने वाला है, ऐसा नहीं कहा। वो रहमान और रहीम है, कितनी उसकी शफकत और मेहरबानी है। तो इसलिए हम जब कुरान खोलते हैं तो इसी सोच के साथ खोलें कि हमारा रब बहुत रहमान और रहीम है, और अपनी नमाज में भी जब ये दो अल्लाह ताला के अस्मा को पढ़ें तो आपका दिल मोहब्बत से भर जाए कि अल्लाह तू इतना रहमान और रहीम है। तेरी रहमत, तेरी नरमी, तेरी शफकत, तेरी मोहब्बत इतनी ज्यादा है, और मैं तो इस काबिल भी नहीं, और तू मेहरबान है मुझ के मेरे ऊपर कि जो मुझे इतना वक्त दे रहा है। तो इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, बेशक अल्लाह ताला अपने बंदों पर इससे भी ज्यादा रहम करने वाला है जितनी माँ अपने बच्चे पर रहम करती है, और माँ से ज्यादा बच्चे पे कोई भी नहीं रहम करता ना। अल्लाह अकबर। अबुल आलिया कहते हैं कि रहमान वो है जो देता है जब सवाल करें, और रहीम वो है जो नाराज होता है अगर उससे सवाल ना किया जाए, ये है उसकी रहमत। तो रहमान अल्लाह ताला की यानी सिफात है, उसका सिफाती नाम भी और जाती नाम भी है उसका। और रहमान जैसे अल्लाह अल्लाह ताला का जाती नाम है, इसी तरह रहमान है और सारी मखलूक के लिए, चाहे वो काफिर है, मुशरिक है, दहरिया है, कुछ भी है, सब के लिए। और ये अल्लाह ताला की बड़ी प्यारी सिफत है, और ऑन टॉप ऑफ इट रहीम भी कहा गया, जिस जो भी रहम से ही है, और इससे कितनी एक्सटेंसिव रहमत का पता चलता है उसकी, कि वो अपनी रहमत का मामला करता है। और रमजान में तो उसकी रहमत कितनी ज्यादा बढ़ जाती है, रहमत की बारिश होती है उस रहमान की। तो हम जब नमाज शुरू करते हैं, कितने प्यारे कलिमात से स्टार्ट करते हैं, आज यहीं तक हम नमाज को सीखेंगे। और उम्मीद है कि आप लोगों ने अपना कुरान करीम का दौर शुरू कर दिया होगा, उसको पढ़ रहे होंगे, और खुशकिस्मत हैं वो कि जब वो कुरान पढ़ते हैं तो उनको समझ में भी आता है। आप देखा करें ज़रूर कि कुरान करीम मैं पढ़ती हूँ तो मुझे कितना समझ में आ रहा है, ये ज़रूर नोट किया करें। क्या 1%, 2%, 50%, 90%, कितना समझ आता है? और अगर नहीं समझ आ रहा, मिसाल के तौर पे अगर आपको 50% भी आता है तो 50% आपको इल्म लेने की ज़रूरत है, और अगर 1-2% समझ आ रहा है तो तब भी आपको इसके लिए एफर्ट करने की ज़रूरत है। याद रखिए अब्दुल्ला बिन मसूद का कॉल है कि इल्म ज़रूर हासिल करो, मुझे उस ज़ात की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, इल्म वालों की इज्जत देखकर अल्लाह के रास्ते में शहीद होने वाले भी ख्वाहिश करेंगे काश वो उलमा बनाकर उठाए जाते, इल्म वाले बना के। तो इल्म हासिल करना, सीखना दीन को, और ख़ास तौर पे कुरान का इल्म लेना, ये बहुत बड़ा ऑनर है, बड़ी सआदत की बात है अगर अल्लाह ताला आपको इसके लिए चुन लेता है। अपने लिए इल्म मांगे, रब्बी ज़िदनी इल्मा की दुआ किया कीजिए, क्योंकि ये दुआ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने खुद सिखाई कि ऐ मेरे नबी ये मांगा करो मुझसे। तो इल्म कितनी बड़ी कद्रो मंजिलत वाली चीज़ है। आप अगर चाहते हैं, देखिए शहादत का मर्तबा पाना तो आसान नहीं, लेकिन इल्म हासिल करना और इसके लिए कोशिश करना, ये तो हमारे बस में है, शहादत हमारे बस में नहीं है। तो कोई कोई अपने आप को खुद तो नहीं शहीद करके मौत दे सकता ना, ऐसी कोई जंगें हो रही हैं, तो फिर हम क्या करें? इल्म हासिल करते कि क्यों ना शुहदा से भी ऊपर का दर्जा पा लें, कि वो भी उस दिन रश करें, उनको भी ख्वाहिश हो कि काश वो इल्म वाले होते। इसके लिए एफर्ट करनी पड़ेगी, लेकिन अभी से नियत कर लीजिए, रमजान में नियतें करें, दुआएं करें, अल्लाह ताला ये इल्म का रास्ता आपके लिए आसान कर देगा। तो आज की हमारी जो जिक्र है वो यही है, अल्हम्दुलिल्लाह का जिक्र, जिसको सूरह फातिहा का भी स्टार्ट कहा जाता है, अल्हम्दुलिल्लाह से सूरह फातिहा हम नेक्स्ट टाइम देखेंगे इंशाल्लाह ताला। तो अल्हम्दुलिल्लाह कितना, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह ही आदद मा खलका, अल्हम्दुलिल्लाह ही मिल अमा खलका, अल्हम्दुलिल्लाह ही अदद मा फिल अर्दी वस्समा, अल्हम्दुलिल्लाह ही अदद मा अहसा किताबु, अल्हम्दुलिल्लाह ही मिल अमा अहसा किताबु, अल्हम्दुलिल्लाह ही अदद कुल्ली शई, अल्हम्दुलिल्लाह ही मिल अकुल्ली शई। अगर आपने ये कलिमात कह दिए तो आपने इतनी ज्यादा अल्लाह ताला की तारीफ कर दी कि जितनी उसकी मखलूक का अदद है, जितनी उसकी मखलूक का भराव है, जितना आसमानों जमीन में जो कुछ है, जितना कुछ उसकी किताब में है, और हर चीज के अदद के बराबर आपने उसकी तारीफ और उसका शुक्र अदा किया। मुकम्मल शुक्र अदा कर दिया, ये यानी जो आपको नेमतें मिली उनका शुक्र अदा हो गया ये कलिमात कहने से। तो ये बड़ी प्यारे कलिमात हैं, इनको ज़रूर शामिल रखिएगा और कहीं लिख के लगा दीजिएगा, और आप बार बार पढ़ते रहें, आपको याद हो जाएंगे। आज की दुआ, देखिए मैं आपको वो दुआएं बताऊंगी इंशाल्लाह जो बहुत कॉम्प्रिहेंसिव होंगी। दुआएं तो बहुत सारी हैं, लेकिन मेरी कोशिश होती है कि वो चूज करूं जो ऐसी हो कि थोड़े से अल्फाज के अंदर आप बहुत कुछ मांग लें, बहुत कुछ कह डालें। तो आज की दुआ है, अल्लाहुम्मा जाल अमली कुल्लहु सालिहा। अल्लाह मेरा सारा का सारा अमल नेक बना देना, यानी मेरे से हो ही नेक अमल, मेरे से सारे नेक अमल ही करवाना, सारे नेक अमल नेकी वाले हो जाए, मेरे जिंदगी नेकी वाली हो जाए, अमल सारे के सारे कुल्लहु सारे के सारे नेक हो जाए, यानी बुराइयां मुझसे ना हो। यानी आपने इनडायरेक्टली ये कह दिया कि मुझे बुराइयों से दूर रखना, नेकियों में दौड़ा देना। वजअलहु ली वजही का खालिसन, और देखें कोई भी नेकी अगर उसमें रयाकारी आ गई तो वो कबूल नहीं होगी। तो अब ये भी हम चाहते हैं कि अल्लाह ताला कबूल कर लेना, अब नेकियां ये ना हो कि हम नेकियों में दौड़ते रहें और वो कबूलियत का शर्फ ही ना पाए, तो वो जाया ही हो जाए अगर यहाँ पे, तो अल्लाह ना करे ऐसा हो तो वहां पे जाके तो कुछ भी नहीं मिलेगा। तो हम सोचते रहे हम बहुत नेकियां कर रहे हैं, लेकिन वो नेकी तो यहीं रह गई। तो हमने क्या दुआ की, ए अल्लाह इसको अपने चेहरे के लिए खालिस कर देना, यानी मेरी जो भी नेकी हो ना अल्लाह सिर्फ तेरी खातिर हो, तेरे दीदार के लिए हो, तेरी रजा के लिए हो, खालिसन वला तजअल लि अहदिन फीही शैया, और अल्लाह ताला किसी और के लिए उसमें जरा सा भी कोई हिस्सा ना हो, यानी जरा भी शिर्क ना आए इसके अंदर, यानी रयाकारी करके भी, रयाकारी भी शिर्क है ना, तो जरा भी के लोग देख रहे हैं उसको दिखा दूं मैं नेक बन जाऊं, मैं नेक बीबी कहलाऊं, अल्लाह ताला किसी के लिए भी ना हो, मेरा हर अमल सिर्फ तेरी खातिर हो। कितनी मोहब्बत भरी दुआ है, अल्लाह मैं हर नेकी चाहती हूँ कि सिर्फ तेरी खातिर हो, सुभान अल्लाह। तो ऐसी नेकियों की अल्लाह ताला से ही तौफीक मांगनी चाहिए, क्योंकि हम इतने कमजोर हैं ना कि हम जरा जरा सी चीज कर लेते हैं तो उसके बाद कहीं शो ऑफ हो जाती है, कहीं हम एहसान जता देते हैं, कहीं हम रयाकारी कुछ ऐसी दिखा देते हैं कि अमल अल्लाह ना करे कि जाया हो जाता है। तो हमें ये दुआ करनी चाहिए जाने या अनजाने में, किसी तरह भी, या अल्लाह ताला मेरे से ऐसा कोई बात ना हो कि किसी और का हिस्सा मेरी इस नेकी में पड़ जाए। तो अपने लिए ये दुआएं करके अपनी नेकी को महफूज कर लें, अपनी नेकी को बचा लें, और जब ये खालिस अल्लाह के लिए होगी और सारे ही अमल नेकी के हो जाएंगे, खासुल खास रमजान में जब आप ऐसे अमल करेंगे, तो इंशाअल्लाह ताला इसके लिए सिवाय जन्नत की और कोई चीज नहीं कि इंसान इतने इतने भर भर के नेकियों के अमल कर रहा हो और सारे ही उसके अमल नेकी वाले और सारे ही उसके अमल सिर्फ अल्लाह की खातिर हो। ये वो किसी ने कहा था ना कि अगर मुझे पता चल जाए कि मेरी अल्लाह ताला ने एक नमाज भी कबूल कर ली, एक जिक्र भी कबूल, एक नेकी भी कबूल कर ली, तो मैं इतना खुश हो जाऊंगा, क्योंकि वो रब इतना बड़ा शान वाला है, उसने एक भी चीज कबूल कर ली ना तो बहुत है, क्योंकि वो जब नवाजने लगता है तो वो अपनी शान के मुताबिक नवाजता है। तो अल्लाह ताला हमारे तमाम आमाल को ही इस काबिल बनाए, इस काबिल बनाए कि वो कबूल कर ले, वरना इस काबिल नहीं होते। अल्लाह ताला हम सब पर अपनी रहमतों की बारिश फरमाए, और अल्लाह ताला हम सब से वो नेकियां लें जो उसको राजी करते हैं। सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहमदिक नशहदु ला इलाहा इल्ला अंत नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।